हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लेकिन तभी सिद्धार्थ बोला था, ठीक है, अगर आपको वो पूजा करवाकर खुशी मिलती है तो ठीक है, मैं उस लड़की के साथ उस पूजा को करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप मुझे किसी भी तरह से फोर्स नहीं करेंगी कि मैं उस लड़की के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाऊं। मैं सिर्फ पूजा के लिए तैयार हूं, रिश्ते के लिए नहीं। अब ये सुनकर रणविजय को थोड़ी राहत तो महसूस हुई, लेकिन जिस तरह से दादी हर बार सिद्धार्थ और झलक को करीब लाने की कोशिश कर रही थी, उससे रणविजय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वहीं अनामिका ने देखा कि रणविजय जानलेवा नजरों से दादी को घूर रहा है, तो वो तुरंत उसके पीछे गई, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बॉस, आज हमारी फॉरेन क्लाइंट्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस है, आई थिंक आपको चलना चाहिए। अब अनामिका के इस तरह टोकने पर रणविजय तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने अपने कंधे हिलाए और अनामिका के साथ जाने लगा, लेकिन पीछे पलटकर भी वो दादी को जानलेवा नजरों से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों ही आंखों में उन्हें उड़ा देगा, मार डालेगा। और वो मन ही मन वो बोला, लगता है दादी के दिन पूरे हो चुके हैं, दादी को इस बुढ़ापे की जिंदगी से आज़ादी देने का वक्त आ चुका है। कल के दिन झलक सिद्धार्थ खुराना के साथ पूजा में बिल्कुल नहीं बैठेगी। अगर दादी ही नहीं रहेंगी तो ना कोई पूजा होगी, ना कोई रिचुअल होगा और ना ही कोई सिद्धार्थ और झलक को जोड़ने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए रणविजय के चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकता था, चाहे उसे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। वहीं सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए दादी से कहा, दादी, आप इस तरह मुझे ज्यादा ब्लैकमेल नहीं कर सकती, प्लीज आप मुझे इस तरह ब्लैकमेल करना बंद कीजिए, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा हूं, अब चलिए और जाकर आराम कीजिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। ये बोलकर वो दादी को कमरे तक ले आया, उन्हें आराम करने को कहा और सीधा अपने कमरे में आ गया। वहां जाकर जैसे ही उसने देखा कि झलक आंखें बंद किए लेटी हुई है, तो वो वहीं खड़ा होकर झलक को घूरने लगा। मन ही मन वो बोला, मेरी जिंदगी का सुकून और चैन बर्बाद करके ये लड़की इतनी सुकून से सो कैसे सकती है? समझ नहीं आ रहा कि कोई दर्द इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था इस लड़की के लिए। एक तरह से मेरे अंदर इस लड़की के लिए फीलिंग्स जन्म ले चुकी थीं, लेकिन तुमने अपनी इतनी सारी गंदी हरकतों से मेरी फीलिंग्स को पूरी तरह मार दिया। सिद्धार्थ खुराना तो पहले से ही एक जानवर था, जानवर में धीरे धीरे कब इंसान बनने लगा मुझे खुद पता नहीं चला, और तुमसे प्यार हो गया। लेकिन एक बार फिर तुम्हारी घटिया चालों ने दर्द खाए हुए इस इंसान को वापस जानवर बनने पर मजबूर कर दिया है। अब सिद्धार्थ खुराना तुम्हें बताएगा कि उसकी जिंदगी से खेलने का अंजाम क्या हो सकता है। झलक को देखकर उसका दिल तो बस उसका गला दबाने का ही कर रहा था। फिलहाल वो वहां से निकलकर सीधा बाथरूम में घुस गया। वहीं सिद्धार्थ के जाने के बाद झलक ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और बुदबुदाकर बोली, हमें पता है कि हमें देखकर आपका हमारा गला दबाने का दिल कर रहा होगा, और यकीन मानिए मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, हमारे भी कुछ ऐसे ही ख्याल आते हैं, हमें भी आपको देखकर कुछ ऐसे ही ख्याल आते हैं जैसे आपको हमें देखकर आते हैं। ये सोचते हुए झलक ने करवट बदली और आंखें बंद करके अब सच में सोने की कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी ओर अनामिका ने रणविजय को टोकते हुए कहा, आप क्या कर रहे थे, क्या जरूरत थी आपको दादी को इस तरह घूरने की? अगर दादी को आप पर शक हो जाता तो आपका प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। इस पर रणविजय झल्लाते हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप, फालतू की बकवास बंद करो, मुझे हर हाल में झलक चाहिए और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम जाओ और जाकर वही करो जो मैंने तुम्हें समझाया है, और खबरदार अगर तुमने मुझसे एक बार फिर आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की। ये सुनकर अनामिका की आंखें लाल हो गईं, क्योंकि रणविजय उससे कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा था जो वो नहीं करना चाहती थी। उसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो रहा था। अनामिका ने एक बार फिर कहा, मैंने तुम्हें मना किया है, मैं वो सब नहीं कर सकती। लेकिन रणविजय हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, शायद तुम्हें अपना मकसद पूरा नहीं करना है। याद रखना अनामिका, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर वो आराम से अपनी चेयर पर बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि अनामिका कुछ भी करेगी लेकिन वो अपना मकसद हर हाल में पूरा करेगा। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा को ये खबर मिल चुकी थी कि अगले दिन मंदिर में एक रिचुअल होने वाला है और वहां दादी सिद्धार्थ और झलक को लेकर जाने वाली हैं, इसीलिए उसने ठान लिया था कि वो झलक के जाने से पहले ही वहां पहुंच जाएगी। क्योंकि जब आकांक्षा का खुराना मेंशन में आना जाना था, तब उसने कुछ नौकरों को हटाकर अपने खास नौकर वहां लगा दिए थे, जो आकांक्षा ओब्रॉय को हर खबर और हर जानकारी दिया करते थे, इसीलिए खुराना परिवार की सारी खबरें उसे मिलती रहती थीं। दादी सिद्धार्थ और झलक के आगे क्या होने वाला है, इसकी खबर भी उसके बिछाए हुए मुखबरों ने पहले ही उसे दे दी थी। इसलिए आकांक्षा जल्दी ही अपनी माँ नैना ओबेरॉय के पास पहुंची और बोली कि उसे एक खूबसूरत सी साड़ी चाहिए जिसे पहनकर वो मंदिर जाने वाली है। अपनी बेटी की बात सुनकर नैना ओबेरॉय बहुत खुश हुई क्योंकि उन्हें आकांक्षा को साड़ी में देखने का बहुत मन था। वैसे भी आकांक्षा ने कभी साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि उसे वो ओल्ड फैशन लगती थी और वो हमेशा ब्रांडेड कपड़े ही चुनती थी। लेकिन अब उसने खुद साड़ी पहनने का फैसला लिया क्योंकि उसे पता था कि अगर वो साड़ी पहनकर नहीं गई तो शायद मिसेस खुराना उसे ज्यादा पसंद ना करें। इसलिए उसने अपनी माँ से जल्दी ही साड़ी ले ली जिसे पहनकर वो कल मंदिर जाने वाली थी। फिलहाल दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना अपने कमरे से बाहर आया और सीधा जाकर बेड पर लेट गया। उसने अपने और झलक के बीच तकियों की मोटी दीवार बना ली थी क्योंकि वो झलक को टच तक नहीं करना चाहता था। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि खुराना परिवार में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए झलक उसके करीब आएगी और एक बार फिर प्रेग्नेंट होकर अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश करेगी, लेकिन सिद्धार्थ ने ठान लिया था कि वो उसे टच तक नहीं करेगा। फिलहाल बेड पर लेटते ही झलक की भीनी भीनी खुशबू ने सिद्धार्थ खुराना को घेर लिया। उसे अजीब सी खुशबू आने लगी और वो मदहोश सा होने लगा, लेकिन उसने अपने दिमाग और अपने इमोशंस पर पूरी तरह कंट्रोल रखा। कब नींद आ गई उसे खुद एहसास नहीं हुआ। इस वक्त वो किसी भी तरह की बहस नहीं चाहता था, उसके दिमाग और शरीर दोनों को सुकून और आराम की जरूरत थी। उधर आधी रात हो चुकी थी लेकिन रणविजय की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। वो इधर उधर टहल रहा था, बार बार उसके दिमाग में दादी सिद्धार्थ और झलक का साथ बैठकर रिचुअल करने का ख्याल आ रहा था। अचानक ध्यान न देते हुए वो उठ बैठा और सीधा दादी के कमरे की ओर चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि दादी गहरी नींद में सो रही थी। पास में ही उनकी बीपी की दवाइयां रखी हुई थी जिसे साफ पता चल रहा था कि दादी दवा खाकर सोई हैं। अचानक रणविजय ने दादी के पास रखा हुआ तकिया उठा लिया। वो तकिए को हाथ में लेकर घूमने लगा और एक पल के लिए वो दादी के बहुत करीब तकिया लेकर जाने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो दादी का मुंह दबाकर अभी उनकी जान ले लेगा। लेकिन दादी के बिल्कुल पास जाकर उसने तकिया एक तरफ फेंक दिया और झुंझलाते हुए अपने बाल नोचते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उसे अपना छोटा सा बचपन याद आ गया जब दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा था।
कहीं न कहीं ये सोचकर उसने अपना इरादा बदल दिया और वापस अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन एक बार फिर कुछ धुंधले और डरावने दृश्यों से घेरने लगे और वो पूरी तरह बेचैनी से भर उठा। वो तुरंत अपने कमरे में आया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक बार फिर वही डरावने और उलझे हुए दृश्य उसके दिमाग में घूमने लगे और उसे पूरी तरह घेर लिया। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और पढ़ते रहिए स्टोरी मनिया।